प्रियंका योशिकावा 2016 की मिस यूनिवर्स जापान बनी है, और उसके पहले लास्ट ईयर भी एक्चुअली इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, जापान में पहली बार लास्ट ईयर 2015 में एक अफ्रीकन अमेरिकन और जापानीज पेरेंटेज की एक लड़की पहली बार वहां पर मिस यूनिवर्स जापान बनी थी लास्ट ईयर। उसका नाम आरियाना मियामोतो था, तो उसको लेकर के भी काफी प्रतिक्रिया आई थी उस समय 2015 में। लेकिन अभी जब फिर से इंडियन और जापानीज जिस लड़की को ये पदवी दी गई है उसको लेकर के फिर से प्रतिक्रिया आई है, और उसमें कुछ काफी कंसर्वेटिव प्रतिक्रियाएं रहती हैं नेट्स वगैरह पे या ब्लॉग्स पे, क्योंकि जापान में कॉन्सेप्ट क्या है कि प्योर जापानीज जो शुद्ध जापानी लोग हैं उनको कहते हैं कि वो क्यों नहीं ये सब काम करते हैं, और जो हाफ बोलते हैं उनको हाफू बोलते हैं जापानीज में। हाफ मतलब कि मिक्स पेरेंटेज से जो बच्चे आकर के जापान में पैदा हुए हैं और रह रहे हैं पढ़ रहे हैं उनको इस तरीके की कैसे पदवी मिलती है। तो लेकिन एक तरफ तो ऐसी कंजर्वेटिव प्रतिक्रियाएं आती हैं, दूसरी तरफ हमें भी देखना चाहिए कि भाई जापान में चेंजेस हो रहे हैं कि 2 साल लगातार जो प्योर जापानीज है उसको नहीं मिल करके हाफू या हाफ जापानीज जो है जिसका कि सॉरी वन ऑफ द पेरेंट्स जो है वो जापानीज है और वन ऑफ द पेरेंट्स इज फ्रॉम अदर कंट्री। तो इसमें एक जापान की हमें प्रोग्रेशन भी देखनी चाहिए कि वहाँ पे इस तरीके की एक्सेप्टेंस हो रही है। तो लगातार 2015 2016 में दोनों साल जो मिस यूनिवर्स जापान बनी है वो जिसको हाफ बोलते हैं हाफ, तो उसमें प्रोग्रेस भी सोचना चाहिए हमें कि जापान में चेंजेज आ रहे हैं जो कि हमने पिछले 50 वर्षों में नहीं देखा।
जी पुर्णेंद्र जी, ये बताइए कि जापान में जो भारतीय डायस्पोरा है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
देखिए ऐसा है कि अगर हम लोग जैसे वेस्टर्न कंट्रीज या मिडिल ईस्ट में भी या अफ्रीका में जो भारतीय डायस्पोरा है उसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है, और जापान में क्या है अभी बहुत हाल के समय तक जापान में माइग्रेशन या वहाँ पे सिटीजनशिप या परमानेंट रेसिडेंसी ये एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज था। लेकिन अभी जापान में भी चेंजेज हुए हैं और काफी विदेशी लोगों को नागरिकता मिल रही है या परमानेंट रेसिडेंसी मिली है, और उसमें इंडियन कम्युनिटी को देखें तो जैसे मैं बताऊं आपको, मैं 1980 में जब पहली बार जापान गया था तो हमारे पीछे बच्चे भागते थे कि ये देखो अमेरिकन जीन, अमेरिका जीन मतलब अमेरिका जा रहा, अमेरिकन जा रहा है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट एक गाइजिन या फॉरनर का जो कॉन्सेप्ट था कि जो नॉन जैपनीज लुकिंग जो पर्सन है वो अमेरिकन होगा, तो वो छवि भी चेंज हुई। अब इतने कम्युनिटी इतने एथनिक बैकग्राउंड के लोग जापान में आ गए हैं कि एक एक्सेप्टेंस शुरू हो गया है। और जहाँ तक भारतीय कम्युनिटी की बात है वो काफी छोटी थी, लेट 1990s में मेरे ख्याल में 6-7 हजार इंडियंस लोग रहते थे जापान में, और पिछले साल करीब 25 हजार जो संख्या आई है वो 25 हजार, मतलब पिछले 15 सालों में करीब इंडिया की डायस्पोरा कम्युनिटी वो करीब तिगुनी हो गई है। तो चेंजेज हुए हैं, और उसमें इंडिया की एक आईटी की बहुत बड़ी रोल है क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर में इंजीनियर्स जो हैं जापानीज कंपनीज या कुछ इंडियन कंपनीज हैं उसमें भी काम कर रहे हैं। तो उसमें काफी एक टोक्यो के एक साइड में एक जगह है निशिकासाई करके, वहाँ पे एक पूरी इंडियन कम्युनिटी है। आप हर तरीके की ग्रोसरी शॉप है, हर तरीके की रेस्टोरेंट्स हैं, और मोस्टली वहाँ इंडियंस लोग रहते हैं। तो वो जापान में काफी एक इंडिया कह सकते हैं टाउन उभर करके आया है टोक्यो में। तो चेंजेस हो गए इंडिया में, और ये हमने जो देखा है कि अभी प्रियंका को जो वहाँ पे मिस यूनिवर्स की टाइटल मिली है, जापान मिस यूनिवर्स जापान की जो टाइटल मिली है उससे फिर से एक बार भारत जो है जापान के नक्शे पे उभर के आया है।
पुर्णेंद्र जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जापान में आम तौर पर भारत को लेकर लोग क्या सोचते हैं। ये उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री आबे, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बहुत अच्छी दोस्ती या केमिस्ट्री कह सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर अगर बात करें, ये भी कहा जाता है कि रजनीकांत शायद जापान में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप क्या आकलन करेंगे?
देखिए ऐसा है कि हिस्टोरिकली इंडिया की जो छवि है वो जापान में काफी अच्छी रही है। उसका एक कारण है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें भारत और जापान कोई सीधे साधे उन लोगों में कोई दुश्मनी या कुछ ऐसा ऐसे वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो एक अच्छी छवि है भारत की जापान में, लेकिन ये जो छवि बनी है भारत की, उसका भी जो रिसेंटली उसका कारण यह है कि भारत से बहुत सारे आईटी के लोग वहाँ पे, इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो लोग अच्छा काम करें, उनकी हमेशा रिपोर्ट काफी अच्छी आती है। तो इसको लेकर के भारत की छवि अच्छी लें। जो जापान में एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो फॉरेनर्स हैं वो जापान में आते हैं एज टेम्पररी रेसिडेंट्स, वो जो है गेस्ट हैं वहाँ पे, लेकिन जब वो गेस्ट से वहाँ पे वो वहाँ के नागरिक या परमानेंट रेसिडेंट बन जाते हैं, तो अभी भी जापान में उसको लेकर के एक सामाजिक रूप से प्रतिक्रिया आती है। उनको लगता है कि कैसे कोई बाहर का आदमी जापानी कैसे बन जाएगा। तो उसको लेकर के सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि और देशों के लोग भी जो वहाँ पे रह रहे हैं, कुछ ऐसी सामाजिक प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा है, काफी चेंजेस हो गए हैं। अब देखिए 2 मिलियन लोग जापान में विदेशी मूल के लोग रह रहे हैं वहाँ पे, नॉन जापानीज, तो 1.5% जापान के, ऐसे तो सोचिए तो परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में अगर परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
जी, और रजनीकांत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर?
हाँ, रजनीकांत की एक्चुअली 10 साल पहले, 15 साल पहले वहाँ पे कोतोरोकू महाराजा, डांसिंग महाराजा करके जो फिल्म चली थी वहाँ पे, वो बहुत ही पॉपुलर हुई। और अभी रिसेंटली वहाँ पे एक्चुअली कुछ इंडियन मूवी जैसे 3 इडियट्स बहुत ही पॉपुलर है वहाँ पे, बहुत पॉपुलर हुई। और अभी वहाँ पे सबसे ज्यादा जानने वाले, जो अब लोगों से बात करो, पूछो इंडियन इंडिया के बारे में जानते हो, तो अभी सलमान खान के लोग बात करते हैं ज्यादातर, कि सलमान खान जो है वो इंडिया की, बॉलीवुड का एक रिप्रेजेंटेशन जापान में हो रहा है। तो धीमे धीमे कुल मिलाकर मतलब आप देखिए, लेकिन फिर भी भारत के लोग जो है वहाँ जापान में बहुत कम है। तो धीमे धीमे एक्चुअली जापानी सरकार भी कोशिश करे कि इंडिया से लोगों को लाए, स्टूडेंट्स वहाँ पे बढ़ाएं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि भारत जापान के संबंध अच्छे हो रहे हैं, और मोदी जी में और मिस्टर आबे में अच्छी केमिस्ट्री है, और अगर आप सरकारी स्तर पर लें तो काफी संबंधों में सुधार हुआ है, काफी उन लोगों में एक पॉजिटिव सकारात्मक उनकी आपस में संबंध है। तो राजनीतिक रूप में काफी अच्छे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, लेकिन जो अभी ग्रास रूट्स है या जो पीपुल एक्सचेंज है उसको लेकर के अभी थोड़ा सा काफी स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन धीमे धीमे जापानी सरकार कोशिश कर रही है और इनकरेज कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स को कि तुम आओ और यहाँ पे पढ़ो। और अभी जब भारत में जो बुलेट ट्रेन की प्रपोजल है जापान बना रहा है, उसको लेकर के वहाँ पे आईआईटी वगैरह से या और दूसरे विश्वविद्यालयों से बहुत सारे इंजीनियर्स को वो लोग बुला रहे हैं, इंडियन रेलवे के इम्प्लॉयज भी जापान में जाएंगे जो कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी इंडिया की जो प्रेजेंस है जापान में बढ़ने वाली है, और जो लोग वहां रहते हैं, मेरी बातचीत होती है, मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट हैप्पी इन जापान।
जी, पूर्णेंद्र जी, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका भी शुक्रिया पल्लवी, नमस्कार।